नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बृहस्पतिवार को हुए विधानसभा चुनाव में से किसी भी केंद्र पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई है। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 44,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई है। राज्य में बृहस्पतिवार को पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा था, इसलिए किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान की जरूरत नहीं है। पहले चरण में राज्य के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें रिकॉर्ड 92% से अधिक वोट पड़े थे। उधर तमिलनाडु में भी सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, इसलिए दोबारा मतदान कराने का कोई कारण नहीं है। राज्य में विधानसभा की 234 सीटों के लिए 85% से अधिक मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए मौजूदा मौसम का लक्ष्य 15% से बढ़ाकर 3,45,00,000 टन कर दिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया है कि यह निर्णय उन किसानों की सहायता के लिए उठाया गया है जिनकी फसलों को बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचा। कल नई दिल्ली में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक गेहूं सर्वेक्षण के अवसर पर श्री चोपड़ा ने कहा कि अब मध्य प्रदेश से 1,00,000,000 टन, उत्तर प्रदेश से 2,50,000,000 टन, राजस्थान से 23,50,000 टन और उत्तराखंड से 5,000 टन गेहूं की खरीद की संभावना है। श्री चोपड़ा ने कहा कि गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे 2026-27 में गेहूं के शुरुआती भंडार में लगभग 2,20,00,000 टन की वृद्धि होगी, जिससे देश में गेहूं की कुल उपलब्धता लगभग 5,65,00,000 टन हो जाएगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की सक्रियता के कारण देश में सभी उर्वरकों की उपलब्धता स्थिर, सुव्यवस्थित और आवश्यकता से अधिक है। मंत्रालय के अनुसार उर्वरकों की कमी के संबंध में हाल के दावे तथ्यों पर आधारित नहीं है। एक रिपोर्ट।
अक्टूबर 2025 से इस वर्ष मार्च तक के रबी मौसम के आंकड़े के अनुसार यूरिया की उपलब्धता 257,00,000 मीट्रिक टन से अधिक थी, जबकि आवश्यकता लगभग 196,00,000 मीट्रिक टन की थी। वहीं डीएपी की उपलब्धता 75,00,000 मीट्रिक टन से अधिक थी, जबकि आवश्यकता लगभग 53,00,000 मीट्रिक टन की थी। मौजूदा वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक की अवधि में भी यूरिया की उपलब्धता लगभग 18,00,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले लगभग 69,00,000 मीट्रिक टन है और डीएपी की उपलब्धता लगभग 6,00,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले तकरीबन 22,00,000 मीट्रिक टन है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे बैंक के कारोबार पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लग गई है। रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 में बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2024 में भी बैंक पर अतिरिक्त व्यावसायिक प्रतिबंध के अंतर्गत मौजूदा ग्राहक खातों और प्रीपेड उपकरणों में से किसी भी प्रकार के जमा, क्रेडिट और टॉपअप पर रोक लगा दी गई थी। अमेरिका ने चीन की एक बड़ी तेल शोधक कंपनी हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और ईरान के तेल की ढुलाई से जुड़ी लगभग 40 कंपनियों और टैंकरों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कदम ईरान से तेल निर्यात को सीमित करने के लिए उठाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची कल देर रात अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्ति के लिए ईरान और अमरीका के बीच वार्ता फिर से शुरू करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। वार्ता में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई भी शामिल होंगे। अमरीका भी राजनयिक संपर्क के जरिए समाधान के प्रयास कर रहा है और अमरीका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरिड कुशनर के इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। महिला T20 क्रिकेट मैच में 5 मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।